अनुभाग दो। कल्पना कीजिए, आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक, एक ऐसी पुस्तकालय की जो पुस्तकालय जैसी दिखती नहीं है, बल्कि पुस्तकालय जैसा प्रभाव डालना चाहती है। क्योंकि आज किताबें भी, जैसे बहुत सी और चीजें, उपयोग की वस्तुएं कम और चायखन अधिक है। उन्हें इसीलिए नहीं रखा जाता कि उन्हें पढ़ा जाए, बल्कि इसीलिए कि वे पढ़ी जाए दूसरों की आंखों द्वारा, जो कमरों, हॉलों, रैक को देखते हैं और दाराव यहां निष्कर्ष निकालते हैं, यहां संस्कृति है, यहां शांति है, यहां स्तर है, यहां मनुष्य बिना हास्यास्पद हुए अपने आप को एक भीतरी जीवन वाले इंसान के रूप में महसूस कर सकता है। लेकिन यह पुस्तकालय अपने सारे प्रभाव लोभ के बावजूद फिर भी एक वास्तविक थी। यह एम्फांग हॉल से बहुत ऊपर चारों ओर घूमती हुई गैलरी पर स्थित थी, मानो आने जाने की चहल पहल के ऊपर किसी ने शांति का एक मुकुट रख दिया हो। और शांतिपूर्ण नहीं थी, वह पारगम्य थी, क्योंकि वह हॉल की आवाजों को ऊपर उठने देती थी। गिलासों की खनखनाहट, सूटकेसों के दबे दबे लुढ़कने की आवाज, उस तकनीकी ऊष्मा की धीमी गुनगुनाहट जो इस भवन में ठंड को क्यूरेट करती है। हांस कैस्टॉर्प ऊपर चला गया। वह तेज नहीं चला, वह उसी ढंग से चला जो आत्मनिर्णयता आभास उत्पन्न करता है और वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि एक समर्पण है। उसके पैर सीढ़ियां खोज लेते थे और उसका शरीर, यह अचूक इतिहास लेखक जब वह हिल रहा था, रात की गूंज की रिपोर्ट कर रहा था। तनपटियों में हल्का सा खिंचाव, मुंह में एक सूखापन जो केवल शराब से नहीं आया था, बल्कि उस भीतरी तनाव से जिसे शरीर तब विकसित करता है जब वह यादों के विरुद्ध प्रतिरोध करता है। उसने आतिशबाजी के बारे में सोचा, आकाश के खिंचे तने होने के बारे में, अपने दिल की धड़कन के प्रतिबिंब के बारे में, और उसने सोचा कि जब कोई भगोरा होता है तो वह भले ही किसी युद्ध से निकल भाग सकता है,